ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भागवत महापुराण से छठा स्कंद अध्याय 3 श्लोक संख्या 30। आज श्रीपाद रामानुजाचार्य का तिरुभाव तिथि है, तो इसलिए हम 45 मिनट तक भागवत से कथा सुनेंगे, उसके बाद रामानुजाचार्य के विषय में थोड़ा चर्चा करेंगे। तथा क्षम्यताम सह भगवान पुरुषः पुराणः नारायणः स्वपुरुषै यत् असत् कृतं नः स्वानां अहो न विदुषा रचित अंजलिना शांति गरीयसी नमः पुरुषाय भूमने। तत क्षम्यतां स भगवान पुरुष पुराणो तत क्षम्यतां स भगवान पुरुष पुराणो नारायण स पुरुष यदसत्कृतं नः स्वानामहो न विदुषां रचिताञ्जलीनां स्वानां महो न विदुषां रचिताञ्जलीनां शान्ति गरीयसि नमः पुरुषाय भूम्ने। तच्छम्यतां स भगवान् पुरुष पुराणो नारायण स पुरुष यदसत्कृतं नः स्वानामहो न विदुषां रचिताञ्जलिना शान्ते गरीयसि नमः पुरुषाय भूम्ने। तच्छम्यतां स भगवान् पुरुष पुराणो नारायण स पुरुषै असत्कृतं नः स्वानामहो न विदुषां रचिताञ्जलिना शान्ति गरीयसि नमः पुरुषाय भूम्ने। माता जी तता क्षम्यताम क्षमा करने योग्य सह वह भगवान भगवान पुरुष परम पुरुष पुराण सबसे प्राचीन नारायण भगवान नारायण स्वपुरुषई अपने सेवकों द्वारा यत जो असत ठिठाई कृतम संपन्न न हमारा स्वानाम हमारे ही लोगों का अहो हाय न विदुषाम न जानते हुए रचित अंजलि नाम आपसे क्षमा मांगने के लिए हाथ जोड़े हुए शांति क्षमाशीलता गरीयसी महिमामयी नमः नमस्कार पुरुषाय पुरुष को भूमने सर्वव्यापक अनुवाद और तात्पर्य भक्ति विदान स्वामी प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। तब जमराज स्वयं को तथा अपने सेवकों को अपराधी मानते हुए भगवान से क्षमा याचना करते हुए इस प्रकार बोले, हे प्रभु, मेरे सेवकों ने निश्चय रूप से अयामिल जैसे वैष्णव को बंदी बनाकर महान अपराध किया है। हे नारायण, हे परम तथा पुरातन पुरुष, आप हमें क्षमा कर दें। अपने अज्ञान के कारण हम अयामिल को आपके सेवक के रूप में नहीं पहचान सके और इस तरह हमने निश्चित रूप से महान अपराध किया है। अतएव हम हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगते हैं। हे प्रभु, आप अत्यंत दयालु हैं और सद्गुणों से सदैव पूर्ण रहते हैं, कृपया हमें क्षमा कर दें। हम आपको सादर नमस्कार करते हैं। तात्पर्य, जमराज ने अपने सेवकों द्वारा किए गए अपराध का भार अपने ऊपर ले लिया। यदि किसी प्रतिष्ठान का कोई सेवक कोई गलती करता है तो प्रतिष्ठान उसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेता है। यद्यपि जमराज अपराधों से ऊपर है, किंतु उनकी अनुमति से ही उनके सेवक अजामिल को बंदी बनाए गए थे, जो कि महान अपराध था। न्याय शास्त्र पुष्टि करता है, वृत्त्या अपराधे स्वामिनो दंडः। यदि सेवक कोई गलती करता है तो मालिक दंडनीय होता है, क्योंकि अपराध के लिए वही जिम्मेदार होता है। इस बात को गंभीरता से लेते हुए जमराज ने अपने सेवकों सहित हाथ जोड़कर भगवान नारायण से क्षमा करने के लिए याचना की। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकय चक्षुर्निमीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृन्द।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।
तो ये जमराज का एक तरह से कह सकते हैं इस अध्याय में अंतिम वर्ड है जो अपने सेवकों के साथ में वार्तालाप कर रहे थे जब सेवक उनके पास गए थे। इसके पहले का श्लोक बड़ा ही महत्वपूर्ण श्लोक है, तो मैं सोचा कि उस पर भी थोड़ा हम लोग विचार करेंगे जो कल बताया गया था। यहां पर अंतिम उपदेश जमराज जी अपने सेवकों को दिए हैं, यह कहते हुए किनको लाना चाहिए उनके पास, किनको नहीं लाना चाहिए। देखिए जमदूत लोग चैलेंज एक तरह से किए थे जमराज जी से कि हम तो जानते हैं कि संसार के आप ही एकमात्र शासक हैं और आपके आदेश से हम लोग ये कार्य करते हैं, लेकिन चार हाथ वाले आकर के हमारी सेवा में बाधा डाले हैं और अजामिल जैसे पापी को छुड़ा लिए हैं। तो स्वाभाविक है कि प्रश्न उठता है कि अजामिल में कौन सी ऐसी गुण थी जिसके चलते इन चार हाथ वालों ने आकर के छुड़ा लिया। तो पूरा कथा हम लोगों ने सुना है। अब जमराज जी क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसका उपदेश अपने सेवकों को दिए। ये बहुत जरूरी है कि यदि किसी को हम किसी कार्य में लगाएं, सेवा में लगाएं, तो प्रायः देखा जाता है कि सेवक मतलब मंद बुद्धि वाला, यदि चलाक रहेगा तो सेवक कैसे रहेगा, वो तो मालिक बनेगा, फिर सेवक कहां से रहेगा। तो शूद्र या मंद बुद्धि वाले सेवक होते हैं। सेवकों को हमेशा गाइड करना चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इत्यादि। तो ऐसे प्रतीत होता है कि जमराज जी पहले बताए नहीं थे कि किसको लाना चाहिए किसको नहीं लाना चाहिए, तो अब बता दिए। अजामिल के घटना से बहुत चीज हुआ, अजामिल घटना से अब बतला दिए कि किनको नहीं लाना चाहिए। अब यहां बता रहे हैं किनको लाना चाहिए। तो उस प्रसंग का समाप्ति करते हुए कहते हैं जिह्वान भक्ति भगवद गुण नाम धेय चेतश्च न स्मर्ति यच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति यच्चिरये कदापि तान आन्यवध्य असत अकृत विष्णु कृत्यान्। कहते किनको लाना चाहिए। तो आप लोग याद रखिएगा कि हम लोग तो उस कैटेगरी में नहीं पड़ रहे हैं ना जिनको जमराज के दूत लेकर जाएंगे। तो एक बात कहते हैं कि जिह्वान भक्ति भगवत गुण नाम अधेय, जिनके पास जिह्वा है लेकिन जिह्वा से भगवान का गुणानुवाद नहीं करते हैं, या इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि उन लोगों को लाना जो भगवान के भक्त नहीं है, जो भगवान से संबंधित नहीं है। भगवान से संबंध स्थापित करने का जिह्वा बड़ा ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट है। हमारे शरीर में जिह्वा ही एक ऐसी वस्तु है जो भगवान से संबंध स्थापित करती है। ब्रिज, ब्रिज होता है ना, तो ब्रिज का एक कोना इधर और दूसरा कोना दूसरे पार और बीच में नदी है। तो एक तरफ जिह्वा है और एक तरफ भगवान है और बीच में भौतिक संसार है। तो भौतिक संसार रूपी नदी को पार करने के लिए जो पुल बनता है वह है भक्ति का पुल। भक्ति से हम भगवान को जान सकते हैं। भक्त्या माम अभिजानाति जावन जस अस्मितत्वतः, लेकिन जो प्रथम कोना है भगवान तक पहुंचने के लिए उस साइड में, वह है जिह्वा। इसीलिए श्रीपाद रूप गोस्वामी भक्ति स्वामी सिंधु में कहते हैं, अत श्री कृष्णामादि न भवेद ग्रायम इंद्रिय सेवन मुखे ही जिह्वाद स्वामी व अस्फुरतदा। भक्ति प्रारंभ होती है जिह्वा से। जिह्वा का दो काम है, सब इंद्रियों का केवल एक काम है। आंख का एक काम है देखना, कान का एक काम है सुनना, लेकिन जिह्वा का डबल काम है। एक काम है प्रसाद खाना, स्वाद लेना, और दूसरा काम है बोलना। तो जिह्वा आदौ, जिह्वा आदि, एक अर्थ यह हुआ, और आदि मतलब बिगिनिंग। भगवान से संबंध का जो बिगिनिंग होता है वह है जिह्वा। कैसे? भगवान का नाम लेकर के, जय श्री गोविंदाय राधा सुहाय नाम की जय। कैसे आदि करते हैं, प्रारंभ कैसे करते हैं जिह्वा से? तो भगवान का नाम लेकर के, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, और भगवान का प्रसाद खा करके। तो यहां पर कहते हैं जिह्वान भक्ति, भक्ति मतलब बोलना, या जिह्वा का जो कार्य है, जिह्वा का कार्य है बोलना और प्रसाद ग्रहण करना। तो एक आचार्य कहते हैं कि यहां पर वक्ति शब्द जिह्वा के कार्य से बताया गया है। तो इनडायरेक्टली कह रहे हैं जमराज जी कि जो भगवान का प्रसाद नहीं खाता है उसको मेरे पास लाना, जो प्रसाद खाता है उसको मत लाना, वो प्यूरिफाइड हो जाता है, और जो भगवान का नाम नहीं लेता है उसको मेरे पास लाना। इस देह में तीन ऐसे अंग हैं जो कि हमको भगवान से विमुख कर सकते हैं। एक है जिह्वा, एक है पेट, और एक है जड़ेंद्रिया लिंग। ये तीन जीव को भगवान से विमुख कर सकता है। जो जिह्वा का सेवक हो जाता है वो बिना डिस्क्रिमिनेशन के, बिना भेदभाव के कुछ भी खा लेता है, कभी भी खा लेता है, किसी परिस्थिति में खा लेता है, और कुछ खाने को नहीं मिलता है तो खोजता रहता है कहां वो खाने पे मिलेगा, ढूंढ निकालता है। आजकल इंटरनेट पर खोजते हैं लोग खाने को कहां मिलेगा है? तो जिह्वा का काम है खाना और उच्चारण करना, दोनों के लिए। यहां से आता है तो पेट में आता है, कहते हैं पापी, पेट का सवाल है, पेट को पापी कहते हैं, स्वयं पापी हो गए हैं, पेट को पापी कहते हैं, कि पेट के लिए कठिन परिश्रम करते हैं। जो जिह्वा का सेवक हो जाता है वो भगवान का भजन नहीं कर पाता है, और जो पेट का सेवक हो जाता है वो भी भजन नहीं करता है, वो पशुओं के समान पेट भरने में लगे रहता है, कुत्ता दौड़ता रहता है चारों तरफ, कहां पर भोजन है, कहां भोजन है, चिट्ठी चलती है, सब पशु चलते हैं, वैसे ही पेटु व्यक्ति हमेशा कहां भोजन है, कहां भोजन है, इसी के चक्कर में। और जड़ेंद्रिय लिंग सेक्स डिजायर, जो सेक्सी हो जाता है, जो केवल कामातुर रहता है, वह अभी काम ढूंढता रहता है किस प्रकार से जड़ेंद्रियों को प्रसन्न करूं। इसीलिए कहा गया है जिह्वा रे लालोच बस इति उति धाय शिष्ण उदर परायण कृष्ण ही पाए। जो जिह्वा पेट और जड़ेंद्रिय का सेवक हो जाता है वो कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकता है।
तो ऐसे लोगों को जमराज के पास लाना चाहिए जो पेटू हैं, जो कामी हैं और जो जिह्वा के नौकर हैं। तो जिह्वा न बक्ति, जिह्वा मिला है बकने के लिए है? तो बकना है तो क्या बके? हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे राम। यदि एक बार भी कोई बक लेता है, बोल देता है दिल से कि हे कृष्ण हे नारायण, तो भगवान क्षमा करते हैं। और हम लोगों ने सुना अजामिल का कथा, हालांकि अजामिल कई एक बार कहते हैं, एक बार कहने से भी जिह्वा न भक्ति, न भक्ति मतलब कभी नहीं, जो कभी नहीं जिह्वा लेकर के भगवान का गुणानुवाद जो नहीं करता है, भगवान का जो नाम नहीं लेता है, तो जिह्वा से हमेशा भगवत गुणानुवाद और भगवत नाम ही निकलना चाहिए। हमें मौनी बन जाना चाहिए। मौनी समझते हैं? श्रीपाद सरोवर गोस्वामी कहते हैं कि मौनी मतलब ये नहीं कि गूंगा बन जाना चाहिए। मौनी का मतलब संसार का बात नहीं करेंगे, केवल भगवान का बात करेंगे। तो जिह्वा से भगवान का केवल नाम लें और भगवत गुणानुवाद करते रहें, इसी में जिह्वा की सार्थकता है। और यह जो नाम नहीं करता है, जमराज जी कहते हैं इन लोगों को चुन चुन कर मेरे पास लाना देख करके। तो पहला चीज जिह्वा, चेत, दूसरा सेकेंड स्टॉपेज है दिल। जिह्वा से हम गुणानुवाद करते हैं तो कान में आता है और कान के द्वार से दिल में आता है। दिल का जो कनेक्शन है वो जिह्वा से डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है, वो कान के थ्रो है। इसीलिए हम लोग कहते हैं नाम जप उच्चे स्वर, उच्च स्वर से नाम करना चाहिए। जब नाम उच्च स्वर से करेंगे, सुनेंगे, तब चित जो है, चित्रूपी दर्पण साफ होगा। चेतो दर्पण मार्जनम, चित्रूपी दर्पण तब मार्जन होगा, मार्जित होगा जब नाम कान में जाए और कान से चित में आए। यदि जोर से जप नहीं करेंगे, केवल ये भी हो जाएगा, मुंह बंद करके कर सकते हो, नाम कर सकते हो, लेकिन चित साफ नहीं होगा। चित तब साफ होगा जब हम नाम जपें और सुने, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम। सब शास्त्र कहता है, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि नाम जप उच्चे स्वर, गाय गोरा मधुर स्वरे, गाय गाना चाहिए, उच्चारण करना चाहिए, उद्गायते उच्च स्वर से गाना चाहिए, तुंडवतांडवनी वितनुते तुंडावली लब्धये। जब यह जिह्वा पर नाच करता है नाम, और जब कान में कर्ण कोड़ी कडम्बनी जब कर्ण में आता है तो वहां से चित पर आता है। बड़ा सैद्धांतिक बात जमराज जी कहे हैं, जब जिह्वा से नाम लेंगे तो कान के द्वारा वो चित में आएगा, और जब चित में आएगा तो चित पिघल जाएगा। जब तक से चित पिघलेगा नहीं, जब तक से भगवान का स्मरण नहीं हो सकता है। यदि चित कठोर रहेगा पत्थर के समान, जो कि आज के दिन है, तो उस पर नहीं भगवान का स्मरण होगा। चित में भगवान का स्मरण तब होगा जब चित पिघलेगा, चित जब शुद्ध हो जाएगा, और वह होता है नाम जप से। चेतस च, चेतस च, च का मतलब चेत, प्रभुपाद जी कहते हैं चेत का मतलब होता है मन, चेत का मतलब होता है इंद्रियां, चेत का मतलब होता है कॉन्शियसनेस और चेत का मतलब होता है दिल। तो च का मतलब ये सब, चेतश्च न अस्मृति, यानी जब नाम जप करेंगे तब यह शुद्ध होगा। जब तक से जिनका कॉन्शियस प्योर नहीं हो गया है, जो प्योर कॉन्शियस नहीं हो गए हैं, जिनका मन शुद्ध नहीं हो गया है, जिनकी बुद्धि शुद्ध नहीं हो गई है, उन लोगों को लाओ मेरे पास। तत्चरणारविंद, मन का काम है चिंतन करना। तो मन स्मरण करेगा, स्मृति, स्मृति मतलब ये च शब्द अप्रमाणित करता है, चेतस च न स्मृति, स्मरण थिंकिंग फीलिंग विलिंग जो है वो मन का काम है। तो ये प्रमाणित करता है चेत का मतलब यहां पर मन भी है। तो जो मन से इसमें फीलिंग नहीं है कृष्ण के विषय में, कृष्ण का जो चिंतन नहीं करता है, और जो कृष्ण भावना भावित नहीं है, कृष्ण भावना भावित का मतलब कि सभी वस्तुओं का कृष्ण से संबंध देखना, यह है कृष्ण भावना भावित होना। कृष्ण भावना का मतलब है टू सी और टू नो थिंग्स एज दे आर, सब चीज का संबंध है कृष्ण से। विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणी गवि हस्तिनी सुनी चैवस पाकच पंडिता समदर्शिना, समदर्शिना सबका संबंध भगवान से है, यह काम है चेत का, चरणारविंद। और तीसरा है कृष्णाय नो नमति यह सिर एकदापि, ये जो सिर है ये सिर डुबा देता है, जानते हैं कितने लोग यहां तैरना जानते हैं, हाथ उठाओ, तो जो तैरना जानते हैं ठीक है, जो तैरना नहीं जानते हैं वो लोग हाथ उठाओ, जल्दी आप लोग सीख लो तैरना जो नहीं जानते हो। व्यक्ति तब तक नहीं डूबता है जब तक से उसका सिर ऊपर रहता है, जब सिर एक बार गया तो गए काम से, डूबता है तैरने वाला सिर से। सिर बहुत भारी है, सिर शरीर में उतना भार नहीं है जितना सिर में है देखने में, क्योंकि हेड चेंबर यही है ना, हेड यही है। मन भारी होता है शरीर पूरा भारी हो जाता है, है? तो सिर जो है, सिर का काम है झुकना। कहते जिसका सिर नहीं झुकता है, बलि महाराज जब सिर झुका दी तो भगवान क्षमा कर दिए, सिर झुकाना। कहते कृष्णाय नो नमति ज सिर एकदापि, एक बार भी जो कृष्ण सिर नहीं झुकाता यानी प्रणाम नहीं करता है कृष्ण को। कई एक प्रकार के प्रणाम होते हैं, जैसे नमस्ते, नम धातु से नम, नमते इति नमस्ते, नम धातु यानी झुकना, तो खड़ा होकर के झुका देना भी, इसे नमस्ते कहते हैं, इसे नमस्ते, जब भी नमस्ते करने से झुक जाता है। तो भगवान के सामने खड़ा होकर ऐसे प्रणाम करना वो भी प्रणाम है, ठीक है, जमराज जी माफ कर देंगे, कोई बात नहीं, नमस्ते कहना भी। उसके बाद दूसरा है कृतांजलि, हाथ जोड़ करके ऐसे कभी कभी सिर झुकाना प्रणाम है, हाथ झुका कर, हाथ जोड़कर कृतांजलि, नतांग, नतांग मतलब हाफ, और सष्टांग या अष्टांग जो भी करना है। तो इस प्रकार से जो प्रणाम नहीं करता है, देखिए हमारी वैदिक संस्कृति रही है कि भगवान को या वैष्णवों को देख करके लोग प्रणाम करते थे, आजकल सब भूल गए हैं। आज भी कुछ सज्जन व्यक्ति हैं, रोड से गाड़ी से जाते हैं, कहीं मंदिर होता तो प्रणाम कर लेते हैं, गाड़ी में बैठे प्रणाम कर लेते हैं, है? उनको जमराज जी का इंस्ट्रक्शन याद है कि प्रणाम नहीं करूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो तो कृष्णाय नो नमत यच्छिरे कदापि, जिनका सिर मेरे चरणों भगवान कृष्ण के चरणों में नहीं झुकता एक बार भी उनको। और चौथा कहते हैं कि जो लोग विष्णु कृत्यान अकृत विष्णु कृत्यान, विष्णु कृत्यान मतलब विष्णु संबंधी विष्णु के प्रति कर्तव्य, जैसे जन्माष्टमी हुआ, रामनवमी हुआ, एकादशी हुआ, इस जो फंक्शनों को न करते हैं अकृत्य जो नहीं करता है, जो एकादशी नहीं भुगता है उस दुष्ट को मेरे पास जरूर लाना, ये कह रहे हैं। जो जन्माष्टमी नहीं भुगता है, जो फेस्टिवल नहीं करता है उसको लाना। तो इस श्लोक में चार चीज कहे हैं जमराज जी, ज्यादा इंस्ट्रक्शन नहीं दिए और को देखते, लेकिन चारों में सब कुछ आ जाता है। ए माता जी, अरे बोल, चार चीज में सब कुछ कह दिया। आखिर जब दूत लोग थे इनको बुद्धि भी ज्यादा नहीं थी, तो ज्यादा इंस्ट्रक्शन देते तो समझ में नहीं आता, तो चार चीज मोटा मोटी बता दिए। क्या क्या चार चीज था है? संस्कृत मत बोलो, हिंदी बोल दो। जीवा से जो भगवान का नाम नहीं लेता है या जो प्रसाद नहीं खाता है, ठीक है। दूसरा, आगे पीछे करो कोई बात नहीं, जो प्रणाम नहीं करता है उसको। तीसरा, जो व्रत नहीं करता है, हाँ। और चौथा, जो भगवान का चिंतन नहीं करता है, भगवान के प्रति फीलिंग जिसमें नहीं है। तो इन चार लोगों को याद हो गया ना, याद रखना, कभी गलती मत करना है, चारों जरूर करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम तो इस संक्षिप्त में कल के श्लोक का थोड़ा व्याख्या किया और आज के श्लोक को आप लोग सुनिए। अब जब सब काम हो गया, अपने सेवकों को जमराज जी उपदेश दे चुके क्या करना क्या नहीं करना, अब भगवान के तरफ मुड़ करके भगवान से कहते हैं, तत क्षम्यता स भगवान पुरुष पुराणो। किससे वो क्षमा मांगने जा रहे हैं? कहते हैं क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। वो मदारी का सांप होगा, वो क्या क्षमा करेगा? उसका दांते नहीं काटने वाला, जो काटने वाला दांत वाला सांप क्षमा कर दे उसे। तो भगवान यहां भगवान कहते हैं, भगवान मतलब सर्व सामर्थ, गुस्सा करने में भगवान समर्थ हैं और क्षमा करने में भी समर्थ है। जैसे जगाई और मधाई ने नित्यानंद प्रभु के प्रति अपराध किया, उनके सिर को तोड़ दिया, भगवान पर कोई प्रहार करता भगवान क्षमा करते हैं, कोई बात नहीं जानता है। बल्कि भगवान कभी कभी तो पूजा करते हैं, जैसे भृगु मुनि आकर के अटैक कर दिए भगवान के छाती पर ही। भगवान का क्षमा करना, आप हमारे यहां आए ब्राह्मण देवता, आपका सत्कार नहीं कर पाए। तो भगवान के प्रति अपराध होता भगवान क्षमा करते हैं, लेकिन वैष्णवों के प्रति कहीं अपराध हो गया किसी प्रकार से जान अनजान में कैसे भी, तो भगवान उसको क्षमा नहीं करते। हरि पदे अपराध तार हरि नाम। यदि भगवान के चरण अपराध हो गया तो भगवान का नाम लेकर, तुआ पदे अपराध नाई कोनो त्राण। लेकिन भक्तों के चरणों में अपराध हो गया, वैष्णव अपराध हो गया, तो कोई त्राण नहीं है, कोई माफी नहीं है। तो भगवान सब माफ करेंगे, लेकिन वैष्णवों के चरणों में किया गया अपराध माफ नहीं करते हैं। तो जगाई मधाई ने नित्यानंद प्रभु को चोट पहुंचाया था, भगवान तुरंत सुदर्शन को बुलाए, मानो जगाई और मधाई को खत्म कर डालेंगे। लेकिन नित्यानंद प्रभु भी महान वैष्णव हैं, वो कहे प्रभु ये तो मरे लोग हैं, मरे को मारने से क्या फायदा, ये तो मरा हुआ है लोग, कलयुग में सब मरे हुए हैं, सुदर्शन की जरूरत क्या है। यदि मारना है तो इनके वासनाओं को मारा जाए, और वासनाएं सुदर्शन चक्र से नहीं मारी जाएगी, किससे मारी जाएगी? नाम के द्वारा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम तो इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु की कृपा से जगाई मधाई का उद्धार हुआ। तो भगवान मतलब सर्वसमर्थ, मारने भी समर्थ और बचाने भी समर्थ, दोनों में समर्थ है। जमराज जी अच्छा काम कर रहे हैं, हम लोगों को सीखना चाहिए। जो भी मैनेजमेंट के पोस्ट पर हैं, यहां कितने मैनेजर लोग हैं, हाथ उठाओ तो। नररी कहां है? कोई डिपार्टमेंट हेड यहां पर नहीं है? एक दो बस तीन। धीरे धीरे हर स्तर जल्द उठाओ, धीरे धीरे उठा रहे। सुलोचन चार पांच और लोग कहां, बहुत डिपार्टमेंट है। एनीवे उन लोगों के सीखना चाहिए, सभी डिपार्टमेंट हेड लोगों को। डिपार्टमेंट के भगत गलती कर दे कोई बात नहीं, क्योंकि सिद्धांत है कि यदि भृत्य कोई अपराध करता है, स्मृति कहती है, शास्त्र में कहा गया है, प्रभुपाद जी यहां पर कोट किए हैं न्याय शास्त्र से, कि भृत्यापराधे सर्वत्र शामिनो दंड इष्यते। यदि गलती कोई सेवा करता है तो उसमें सेवा की गलती नहीं मानी जाती है, उसमें मालिक की गलती मानी जाती है कि उसने ट्रेनिंग नहीं देता है। यदि बेटा गलती करता है तो बेटा गलती नहीं है, गलती बाप का है, क्योंकि बाप ने उसको ट्रेनिंग नहीं दिया। तो लीडर का, डिपार्टमेंट हेड का, गुरु का, बाप का, मालिक का यह धर्म है कि अपने डिपेंडेंस को बतलाए, सिखाए, ट्रेनिंग दे। एक कथा है कि भगवान श्री राम जब अयोध्या के राजा हो गए थे, विभीषण जी लंका के राजा थे। विभीषण जी लंका रहते थे लेकिन उनका मन लंका नहीं लगता था, वो भाग भाग करके अयोध्या जाते थे भगवान राम का दर्शन करने के लिए। भगवान राम ने कहा कि अब डेली आ जाओगे तो काम नहीं चलेगा ना, राज चलाना है ना, अब हफ्ता में एक दिन आ जाना। तो कंसेशन भगवान किए, हफ्ता में जाना। तो एक समय की बात है, विभीषण जी आए थे, भगवान श्री राम का दर्शन कर करके जा रहे थे, अयोध्या से निकले थे, बिहार होकर के जाना था। बिहार में एक गांव है, आज भी वो गांव है, उसका नाम है विप्र घोष। उस गांव में केवल ब्राह्मण ही रहते थे, आजकल और लोग भी हुए हैं, मैं जानता हूं, गांव बक्सर से नजदीक में है। तो वहां केवल ब्राह्मण रहते थे और कोई नहीं रहता। विभीषण जी बेचारे आ रहे थे, अयोध्या से भी निकले थे, 150-250 किलोमीटर दूर रथ से आ रहे थे, और भगवान के चिंतन में लगे हुए थे। अब घोड़ा कैसे चल रहे हैं, रथ का पता भी नहीं था। उसी में क्या हुआ कि उस गांव से जब उनका रथ निकल रहा था तो एक बड़ा ब्राह्मण रथ के नीचे आ गया, एक्सीडेंट हो गया, मर गया। अब तो पता नहीं अन्य जगह का, लेकिन बिहार का मैं जानता हूं, कहीं एक्सीडेंट हो गया तो वहां कोई नहीं पूछे गलती किसका है, क्या करेंगे? ड्राइवर को मारेंगे तो, और गाड़ी में आग लगा देंगे, है ना? यूपी में ऐसा है ना, बिहार आदि में होता है, महाराष्ट्र सब, आजकल सब जगह हो गया है, कलयुग है ना। तो वे लोग विभीषण जी को पकड़े और लगे मारने, खूब मारे, खूब मारे, खूब मारे, लेकिन वो मरिए नहीं रहे थे। तो इन लोग बड़ा आश्चर्य हो गया, अरे इतना मारे, इतना मारे, ये मर क्यों नहीं रहा है? तो उसका हाथ पर बांध कर विभीषण जी को काली कोठरी में डाल दिए, विभीषण जी को बंदी बना लिए। जब भगवान श्री राम को इस बात का पता चला तो भगवान श्री राम आए, अपने पुष्पक विमान से भगवान श्री राम आए, सब गांव वाले भगवान श्री राम का अगवानी करने लगे। आओ भगत होने लगा भगवान श्री राम का।
तो वे ब्राह्मण लोग बोले कि प्रभु भगवान ने हाल चाल पूछा, सब ठीक है ना, सब कुछ सब लोग ठीक है। कहा हाँ प्रभु सब कुछ ठीक है, गांव में एक दुर्घटना हो गई, देखने में तो राजा लग रहा था, रथ पर सवार था, वो आकर के हमारे गांव के बड़े विद्वान पंडित जी थे उनको हार डाला। कहा अच्छा फिर क्या हुआ? कहा हुआ क्या, हम लोग उसको खूब मारने का प्रयास किए लेकिन वो मर ही नहीं रहा है। पता नहीं क्या बात, कैसे क्या खाया पिया है, वो मर ही नहीं रहा है। तो भगवान ने कहा कि कहां पर है वो? तो लोग लेकर गए भगवान राम को। विभीषण जी भगवान राम को देखे तो नतमस्तक होकर प्रणाम किए और भगवान उनके प्रश्नों का उत्तर दिए। कहते हैं भगवान, वरम ममैव मरणम, वरम ममैव मरणम भक्तो हन्यते कथम, राज्यम आयु मया दत्त तथैव स भविष्यति। हे ब्राह्मण लोग, आप लोग कह रहे हैं कि मर क्यों नहीं पाया, मैं इतना मारा फिर भी क्यों नहीं मर पाया? तो सुनिए, कहते हैं वरम मम एव, मैंने इसको वरदान दिया है, ये मेरे वरदान, ये मेरा है, मद भक्तो, ये मेरा भक्त है। जब ये मेरा और मेरा भक्त है और उसे वरदान दिया हूं, राज आयु मया दत्तम, इसका राज्य मैं दिया हूं, अकंटक राज, और इसको आयु दिया हूं, ये मर नहीं पाएगा। आज भी जो अमर लोग हैं उनमें से एक हैं विभीषण जी, व्यासदेव अमर हैं, अस्थामा अमर हैं, हनुमान जी अमर हैं, और वैसे ही विभीषण जी अमर हैं। कहते हैं, मैं उसको वरदान दिया, कभी मरेगा नहीं, तुम लोग कैसे मार सकते हो? तथा वह संभविष्य थी, इसलिए तो नहीं मर रहा है। और जहां तक दंड देने का बात है, कहते हैं भित्या अपराधे सर्वत्रम स्वामिनो दंड इष्यते, राम वाक्यम ध्वजा श्रुत्वा विस्मया इदम प्रभु। तो भगवान श्री राम जब यह बात कहे कि जहां तक दंड का बात है तो आप लोग प्लीज इसको जल्दी खोल दीजिए, यह दंड का भागी नहीं है, दंड का असली भागी तो मैं हूं, क्योंकि श्रुति शास्त्र कहता है वृत्या अपराधे सर्वत्र स्वामिनो दंड इष्यते। यदि सेवक कुछ गलती करता है तो दंड का भागी उसका मालिक होता है। इसलिए हे ब्राह्मण देवता लोग, आप मुझे दंड दीजिए। राम वाक्यम द्वज श्रुत्वा, जब ब्राह्मणों ने सुना भगवान श्री राम का वाक तो विस्मय, उनका आश्चर्य हुआ, विस्मयादि इदम ब्रवीत, यह सब सुन करके जान करके उन लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। और फिर उन लोगों ने भगवान श्री राम के चरणों में सस्तांग दनवत प्रणाम कर करके और उन्हें रिलीज किए। तो वास्तव में जो शरणागत होना बहुत अच्छा चीज है, जो शरण ग्रहण कर लेता है कितना अच्छा चीज है। जैसे मैं प्राय उदाहरण था कि हम ही लोगों का, हम लोग शरण ग्रहण किए हैं इस्कान का, तो कोई टेंशन न इनकम टैक्स का टेंशन, न सेल टैक्स का टेंशन, न खाने पीने का टेंशन, कोई टेंशन नहीं। जो शरण ग्रहण कर लेता है उसे किसी प्रकार का टेंशन नहीं होता है। इसीलिए भगवान कहते हैं, भगवान प्रतिज्ञा किए हैं, सर्वधर्मान परित्यज्यो मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मुक्षयिष्यामि मा शुच। जो मेरे शरण में आ जाता है, शरणागत वत्सल है भगवान, कहते मा शुच, जो वही शरण में कोई चला जाता है उस समय से भगवान का वो हो जाता है, उसका जो भी सुख दुख सब भगवान लेते हैं। जो भगवान के शरण में चला जाता है उसका दुख भी भगवान देते हैं, माया देवी नहीं दे सकती है। कभी कभी दुख भी दिखाई पड़ता है, भक्तों को दुख हो रहा है तो भगवान ही देते हैं, माया देवी के अंतर्गत नहीं है।
भक्त। आप लोग गजेंद्र मोक्ष का कथा सुने होंगे। गजेंद्र मोक्ष में देखा जाता है कि गजेंद्र जब आर्त भाव से भगवान को प्रार्थना कर रहे थे, जब ग्राह पकड़ लिया था, ग्राह पकड़ लिया था गजेंद्र के पैर को, मानो ग्राह पैर पकड़ करके गजेंद्र से विनती कर रहा था कि अब भाई अत्याचार मत करो, क्योंकि जितने पानी में जलचर थे उन लोगों को बड़ा परेशानी हो रही थी गजेंद्र के अत्याचार से, डिस्टर्बेंस हो रहा था। जब गजेंद्र खेल रहे थे अपने हथनियों के साथ में तो जंप करके कूदते थे पानी में, हाथियों को पानी से बड़ा प्रेम होता है, तो उसमें एक ये होता था, लहर आता था, और जितने जलचर जीव थे बड़े परेशान हो गए, और परेशानी से भी लोग अपने मालिक ग्राह के पास गए कि भाई तुम रक्षा करो, तो मानो ग्राह आकर के गजराज का पैर पकड़ करके क्षमा मांग रहा था कि भाई ऐसा मत करो, लेकिन गजेंद्र जब नहीं माने तब जोर से पकड़ लिया। जब कुछ भी नहीं काम कर पाया तब अब मरने मरने को थे, जब सब दरवाजे बंद हो गए थे तो गजेंद्र जल में थे, सुण में पानी लेकर के भगवान को अर्पण कर सकते, वही भक्ति था, पत्रम पुष्पम बलम तोयम। लोग पानी से ही पूजा करते हैं भगवान, सूर्य को जल देते हैं ना है? तो पानी से ही पूजा कर सकते थे, लेकिन कमल भगवान को ज्यादा प्रिय है। अबजनाभ, कृष्ण गाय का नाम है अबजनाभ, जिनके नाभि से कमल निकला हो। तो गजेंद्र वहीं पर कमल उठा करके भगवान को अर्पित किए और प्रार्थना करने लगे, और ग्राह इधर पैर पकड़ा था। तो देखिए गजेंद्र शरणागत हो गए कृष्ण का। भगवान जब आए तो गजेंद्र का ही रक्षा नहीं किए बल्कि उस ग्राह का भी रक्षा किए। भगवान अपने लेफ्ट हैंड से ग्राह और गज दोनों को पकड़ करके बाहर पहले निकाले, और राइट हैंड से भगवान, भगवतम वर्णन किया कि जब भगवान आ रहे थे तो गरुण जी पर सवार थे, तो गरुण जी बेचारे वेद मंत्र गा रहे थे, नारायण नमस्तुभ्यम गाते हुए बेचारे आ रहे थे। तो भगवान को बड़ा कौतूहल हो गया, कह रही मेरा भक्त बड़ा दुखी है, आर्त परिस्थिति में है, और ये इनके चाल से यदि चलूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो भगवान कूद पड़े, भगवान गरुण जी से कूद पड़े और आ गए डायरेक्टली, और एक हाथ से निकाल लिए दोनों को। भगवान चाहते तो पानी में भी सुदर्शन से मरवा सकते थे, सुदर्शन पहुंच गए थे पहले ही, लेकिन भगवान निकाले, निकाल करके तब ऑपरेशन किए सुदर्शन जी। तो चूंकि गजेंद्र भगवान के शरण में थे और उनके शरण में ग्राह था, उनका पैर ग्राह पकड़ा था, इसलिए उसका भी कल्याण हो गया, वो भी गंधर्व पद को प्राप्त किया, लेकिन वो ऑर्डिनरी गंधर्व नहीं हुआ, स्वर का गंधर्व नहीं हुआ, वो गोलोक धाम का गंधर्व हुआ, जैसे नलकुबर और मणिग्रीव ये दोनों भी गंधर्व थे, कुबेर के बेटे थे, देवता थे, लेकिन जब उनका उद्धार हुआ तो वे लोग गंधर्व गति को प्राप्त किए, जिनका नाम हुआ स्तिग्न कंठ और मधुकंठ, और ये लोग गोलोक धाम में आज भी भगवान का गुणानुवाद करते। तो वैसे ही यह जो ग्राह था वो भी कोई ऑर्डिनरी गंधर्व नहीं बना। तो मैं शरणागति का बात कर रहा था कि शरणागत वत्सल भगवान है, गजेंद्र भगवान का शरण लिए थे। गजेंद्र को बहुत दुख था, लेकिन भगवान का जो गुणानुवाद कर रहे थे वह गुणानुवाद उनके लिए सहारा था, नहीं तो ग्राह पकड़ा था कितना दुख हो रहा था। उदाहरण दिया गया है कुम्हार का, जो कुम्हार होता है वो मिट्टी का बर्तन बनाता है। देखें आप लोग कोई आदमी, मैं तो देखा हूं, कुम्हार बर्तन बनाता है, जब हांडी बना लेता है तो थोड़ा टेढ़ा रहता है, तो एक हाथ अंदर रखता है और दूसरे हाथ से ऊपर से बराबर करता है, तो लगता तो है कि बाहर से ठोक रहा है लेकिन अंदर सहारा भी दिया है। तो जो भगवान के शरण में चला जाता है, जो शरणागत होता है, भगवान उसको बाहर से ठोकते हैं विभिन्न प्रकार का तकलीफ दे करके, लेकिन अंदर हाथ रखते हैं सहारा। भगवान सहारा रखते हैं कि भाई टूटने ना पाए। लेकिन जो भक्ति में एक बार आ गया, लाल कपड़ा पहन लिया, सोलह मला जप करा, पक्का दीक्षा उक्षा ले लिया, तो उसकी परिस्थिति वही कुम्हार जब तक से घड़ा पका नहीं था तो हाथ अंदर आकर ठोक रहा था, लेकिन जब घड़ा पक जाता है तब क्या करता है, बेचने से पहले फिर ठोकता है बाहर से, उसमें हाथ अंदर नहीं रखता है, बाहर से ठोकता है और उसमें कहीं क्रैक होगा तो फेंक देता है। तो वैसे ही भगवान जब दीक्षा ले लेते हैं, भक्ति में आगे आ जाते हैं, तो भगवान ठोकते हैं बाहर से, जब क्रैक होगा तो कहेंगे माया देवी तुम्हारे जोग है, हमारे जोगाने जोग नहीं है, ले जाओ इसको। हम लोग देखते हैं कि बहुत से ऐसे लोग आते हैं क्रैक पॉट है, क्रैक पॉट, और माया देवी उनको ले जाती है। तो शरणागत होना बहुत जरूरी है, जब शरणागत रहेंगे तो भगवान जैसे गजेंद्र का रक्षा किए, विश्व के इतिहास भक्तों के इतिहास में गजेंद्र ही एक ऐसे हैं, अन्य जितने भी भक्त हुए हैं उन लोगों के लिए भगवान अपना पुष्पक विमान भेजते हैं लेकर के जाओ, लेकिन गजेंद्र को अपने गरुण पर बैठा करके भगवान लेकर गए। जैसे मोटरसाइकिल में पीछे का आदमी बैठा रहता है ना, एक आगे चलाता है पीछे बैठता है, तो भगवान बैठे थे आगे और पीछे गजेंद्र को बैठा करके ले गए, जहां पर लक्ष्मी जी बैठती हैं कभी कभी, हमेशा नहीं, वो तो उल्लू पर बैठती हैं, गरुण पर तो केवल नारायण ही बैठते हैं, भगवान विष्णु हैं, लेकिन गजेंद्र को गरुण पर बैठा करके भगवान अपने धाम लेकर गए। उसी देह, वही जो हाथी का देह था, वह ट्रांसफॉर्म हो गया तुरंत, पहले महाराज इंद्रदुम्न का देह था और श्राप से वो देह हाथी का बन गया, और वही हाथी का देह पुनः चतुर्भुज रूप धारण कर लिया। क्या साइंसिस्ट लोग कर सकते हैं, राजा के देह से हाथी का देह हो जाना और हाथी के देह से सारूप्य मुक्ति प्राप्त कर लेना भगवान के समान, और भगवान चढ़ाकर अपने गरुण पर लेकर गए। तो यह है शरणागतों की का लक्षण, जो शरणागत हो जाता है। तो वही यहां पर कह रहे हैं, हमें रक्षा करना, मैं रक्षा का बात कर रहा था, कहें तत क्षम्यताम स भगवान पुरुष पुराणो, हे भगवान, हे महापुरुष, हे पुराण पुरुष, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, हे नारायण। भगवान का डिफिनेशन देखिए, क्योंकि मायावादी लोग भगवान को निराकार हमेशा कहते हैं, तो कहते हैं भगवान निराकार नहीं है, पुरुष है। और कुछ ऐसे भी तर्कवादी कहते हैं, उनका तो कोई आदि होया, कहते हैं कि पुराण, उनका कोई आदि नहीं है। हम लोग बुढ़े होते हैं, बाल पक जाता है, कृष्ण को कभी कोई देखा है पके हुए बाल वाले कृष्ण, चश्मा पहने हुए कृष्ण, या चाहे डंडा लेकर चलने वाले कृष्ण, कभी नहीं। नौ जौवनम च, कृष्ण हमेशा जवान रहते हैं, कभी बुढ़ा होते नहीं है। तब कहते हैं पुराण, तुम बुढ़े हो। अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव जौवनम च, पुराण पुरुषम लेकिन नव जौवनम च, पुराना है। महाभारत की जो लड़ाई हुई थी तो भगवान के नाती पोते लड़ाई कर रहे थे वहां पर, तो पुरुष पुराणो भगवान पुरुष हैं, निराकार नहीं है, और पुराण पुरुष हैं, आदि पुरुष हैं। कौन? नारायण सपुरुष ही, यानी करें कि मेरे सेवकों के द्वारा, हे प्रभु आपके सेवकों के चरणों में अपराध हुआ। यहां स्वाना महो, स्वानाम का अर्थ है अजामिल तो हैं ही, लेकिन विष्णु दूतों का भी अपराध किया। ये दोनों के लिए, अजामिल के लिए भी है और विष्णु दूत, क्योंकि जमदूत लोग चैलेंज किए थे ना, तो सीनियर वैष्णव से चैलेंज भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो भी अपराध होता है। तो जमराज के दूत लोग चैलेंज किए थे कि आप लोग क्यों ले जा रहे हैं, देखने में तो बड़े अच्छे लगते हैं, ये कर्म तो खराब कर रहे हो। इनडायरेक्टली यही कहे थे ना कि देखने में तो लगते हो कहीं सिद्ध हो, चारण हो, चार हाथ वाले लोग, देखने में कितने सुंदर लगते हो, लेकिन पापी अजामिल को, यानी तुम मूर्ख हो, जानते नहीं हो क्या करना चाहिए, हम लोग विद्वान हैं। तो वाणी के द्वारा अपराध किए थे वो लोग। तो इसलिए यहां पर रचित अंजलि नाम, हाथ जोड़ करके क्षमा मांग रहे थे। शांति गरीयसी, कहते हैं गरीयसी, मैं जानता हूं कि बहुत बड़ा अपराध हुआ है, लेकिन आप हैं गरीयसी, आप महिमामयी हैं। नमः पुरुषाय भूमने, भगवान का कई एक यहां पर नाम से प्रणाम करते हैं, भगवान के गुणों से। भगवान के एक नाम नहीं है, नाम नाम नकारे बहुधा ये सर्वशक्ति, भगवान के अनेक नाम हैं उनके गुणों के अनुसार। तो यहां पर भगवान के गुणों का वर्णन करते हैं, कहते हैं मैं वैसे पुरुष को प्रणाम करता हूं जो कि सर्व षड़ेश्वर परिपूर्ण है, जो पुरुष है, पुराण है, जो नारायण है, और जो अपने भक्त के लिए कुछ भी कर सकते हैं। किसी ने एक भजन गाया है ना, प्रभु को नियम बदलते देखा है, कैसे है, प्रत प्रेम के पाले पड़ के प्रभु को नियम बदलते देखा। भगवान अपना नियम तोड़ देते हैं भक्तों का रक्षा करने के लिए। विष्णु पितामह भगवान ने कहा कि महाभारत की लड़ाई में मैं कोई अस्त्र धारण नहीं करूंगा, विष्णु पितामह ने कहा कि मैं धरवा कर रखूंगा, भगवान ने कहा ये मस्त खुश रहो, चलो कोई बात नहीं, ये भगवान पर कोई कर्म फल लगता नहीं है, तो धारण करें या ना करें। एनीवे, तो आज के श्लोक में जमराज जी भगवान से क्षमा याचना किए हैं, और उसका कारण यह था कि जमदूतों ने अपराध किया था विष्णु दूतों के चरणों में, और अजामिल को जो कि नारायण के नाम लेकर के प्यूरिफाइड हो गया था। तो आज श्रीपाद रामानुजाचार्य का आविर्भाव तिथि है, इतना बड़ा किताब है, मैं इसमें से कुछ चीज लिखा हूं, सब चीज तो लिखना मुश्किल होगा, तो कुछ लिखा हूं, तो हम थोड़ा उसके विषय में वार्ता करेंगे। तो श्रीपाद रामानुजाचार्य का जन्म दक्षिण भारत के भूतपुरी गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम था केशवाचार्य और उनके माता का नाम था कांतिमती। केशवाचार्य और कांतिमती को कोई संतान नहीं थे। केशवाचार्य बहुत बड़े प्रखंड विद्वान पंडित वैष्णव थे। तो वे एक बार भगवान अपने पत्नी के साथ में मद्रास में, चेन्नई में पार्थसारथी मंदिर में आए, और वहां उन्होंने एक यज्ञ किया पुत्र प्राप्ति के लिए, और इस प्रकार से भगवान प्रसन्न हुए। और कालांतर में एडी 1017, एडी का मतलब, हाँ, तो कह सकते हैं क्या 10,017, 1,017, में उनका जन्म हुआ और इनका नाम वे रखे रामानुज, राम अनुज, राम के छोटे भाई यानी लक्ष्मण। ये वास्तव में अनंत शेष के अवतार थे। ये जो संप्रदाय चलाए इसका नाम था श्री संप्रदाय। चार प्रकार के संप्रदाय हैं, ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय है, उसके बाद रुद्र संप्रदाय और कुमार संप्रदाय। तो श्री संप्रदाय के फाउंडर आचार्य जो हैं वे हैं श्रीपाद रामानुजाचार्य। दक्षिण भारत के जितने भी मंदिर हैं रामानुजाचार्य के बनाए गए पद्धति पर चलते हैं। जैसे वैष्णव संप्रदाय में सनातन गोस्वामी हरिभक्ति विलास का रचना किए, या नारद जी के द्वारा पंचरात्र की विधि है, वैसे ही श्री संप्रदाय में इन्होंने किया। इनके सिद्धांत का नाम था विशिष्टाद्वैत और इन्होंने वेदांत सूत्र पर एक भाष्य लिखा जिसका नाम था श्री भाष्य। इनके गुरु का नाम था जमुनाचार्य। जमुनाचार्य का भी बहुत सुंदर कथा है, आई थिंक किताब को मैं रखता हूं, आप लोग बाद में पढ़ लेना, बहुत सुंदर सुंदर कथाएं हैं छोटी छोटी। तो जो मैं नोट बनाया हूं उसी से करूंगा। एक नाथ मुनि थे, नाथ मुनि के शिष्य हुए ईश्वर मुनि, ईश्वर मुनि के शिष्य हुए जमुनाचार्य और जमुनाचार्य के शिष्य हुए रामानुजाचार्य। जमुनाचार्य का जब देहांत हो रहा था तो ये मर गए थे, लेकिन उनका तीन उंगली खुला था, तीन उंगली से खुला था। रामानुजाचार्य जमुनाचार्य से मिले नहीं थे कभी, लेकिन उनको अपना गुरु स्वीकार कर लिए थे और मिलने आ रहे थे तो उनका शरीर तो त्याग दिए थे, लेकिन तीन उंगली खुला था। कोई समझ नहीं पा रहा था कि ये तीन उंगली क्यों खुला है। तो रामानुजाचार्य आकर के कहे कि जमुनाचार्य के तीन ऐसी इच्छा है जो पूरा नहीं हुआ है, जिसके चलते इनका ये तीनों उंगली खुला हुआ है। वे कहे कि उनकी इच्छा थी कि भगवत शरणागति का प्रचार हो और पंच संस्कार और वैदिक पूजा का पद्धति की स्थापना हो। जब एक बात कहे तो पहला उंगली बंद हो गया। फिर उन्होंने कहा कि अलवरों द्वारा लिखा गया जो श्लोक है उसका व्याख्या होना चाहिए, तो दूसरा उंगली बंद हो गया। और तीसरा उन्होंने कहा कि मैं एक करूंगा, कहा कि ये मैं करूंगा, ये करूंगा, फिर कहा कि वेदांत सूत्र का मैं कमेंट्री लिखूंगा, तो तीसरा उंगली बंद हो गया। तो यानी तीन इच्छा जो जमुनाचार्य का तो पूरा नहीं हो पाया था, जिसके चलते वो उंगली खुला हुआ था। और जब उन्होंने कहा कि मैं इसे पूरा करूंगा तो बंद हो गया। जमुनाचार्य बहुत बड़े महान पंडित थे और वैष्णव थे। जमुनाचार्य जब थोड़ा उनके दादाजी, पिताजी, माताजी ये लोग थे, नॉर्थ इंडिया ट्रेवलिंग करने आए और नॉर्थ इंडिया से ट्रेवलिंग कर करके वृंदावन इत्यादि ट्रेवलिंग किए, जब पुनः अपने गांव साउथ गए तो जमुनाचार्य का जन्म हुआ। तो उनके दादा ने उनका नाम जमुना रखा, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में ट्रेवलिंग करके आए थे तो उनका नाम हुआ जमुना। बहुत कुछ ही समय के बाद जमुनाचार्य के पिता का देहांत हो गया। बड़े सुंदर थे उनके पिताजी, देहांत हो गया, इनकी माता विधवा हो गई, तो इनके दादा को बहुत वैराग्य हुआ और जमुनाचार्य के दादाजी घर द्वार छोड़कर चले गए। जमुनाचार्य केवल 5 साल के थे तो उनके ऊपर उनके दादी का, उनके माताजी का और अपना भरण पोषण का पूरा भार आ गया। यमुनाचार्य कालांतर में अपने गृह प्रदेश को त्याग करके और श्रीरंगम चले गए, वहां रहने लगे। जब वे वहीं पर रहते हुए एक महान विद्वान वैष्णव श्री भाष्याचार्य से वे शिक्षा ग्रहण करना शुरू किए। यमुनाचार्य का शील स्वभाव बहुत सुंदर था और वे बहुत कम ही दिनों में गुरु का प्रेम प्राप्त कर लिए। उन दिनों ब्राह्मणों में बहुत तर्क हुआ करता था। वहां पर जो पांड्या देश का जो राज पंडित था उसका नाम था कोलाहल, और वो बड़ा कनिंग था, चीटर था, और चीटिंग के द्वारा किसी को भी हरा देता था, और जो व्यक्ति हार जाता था उसको टैक्स पे करना पड़ता था एक्स्ट्रा। तो एक समय उसने भाष्याचार्य को आर्गुमेंट के लिए, तर्क के लिए बुलाया। भाष्याचार्य चाहते नहीं थे लेकिन फिर भी राजा का आदेश था, गए तर्क के लिए। वो तर्क करने लगे और तर्क में वे हार गए। तब उन्हें टैक्स भरना पड़ा। बेचारे गरीब ब्राह्मण थे, दो साल तक प्राय वो टैक्स पे नहीं कर पाए थे। एक समय वो कहीं किसी काम के लिए गए हुए थे, तब तक से कोलाहल के कुछ चेले चपाटी आ गए यमुनाचार्य के, तो भाष्याचार्य के घर पर, और पूछने भाष्याचार्य कहां है कहां है, और बहुत उल्टा सुल्टा बोलने लगे कि हमारे गुरु राज पंडित हैं कोलाहल पंडित से, उनका नाम ही था कोलाहल, कोलाहल मतलब हल्ला गुल्ला करना, उनसे हार गए हैं और दो साल तक टैक्स नहीं पे किए हैं, तो इनको दंडित करना है, राजा के पास ले जाना है। तो बहुत उल्टा सुल्टा बात कर रहे थे। तो यमुनाचार्य बेचारे शील स्वभाव में बड़े अच्छे थे, लेकिन गुरु का इस प्रकार से निंदा कर उनसे रहा नहीं गया। कहा कि तुम लोग मूर्ख हो, तुम लोगों को कोई ज्ञान नहीं है, न तुमको कोई ज्ञान है न तुम्हारे गुरु को कोई ज्ञान है। ये तुम्हारे गुरु में थोड़ा दम है तो अगर कह दो कि मैं आऊंगा तर्क करने के लिए और मेरा चैलेंज वो स्वीकार करे। थे जा करके अपने गुरु से कहे, तो राज पंडित थे, अब यह बात पांड्य राजा को प्राप्त पता चला, सब लोग बड़े गुस्सा में थे, लेकिन चैलेंज स्वीकार कर लिए। एक डेफिनेट डे पर यमुनाचार्य गए तो वहां पर राजा और रानी दोनों बैठे हुए थे। रानी जब यमुनाचार्य को देखी तो उनके दिल में यमुनाचार्य के प्रति पुत्रवत ममता उत्पन्न हो गया, और राजा रानी आपस में बात करने लगे। रानी ने कहा कि यह बालक जरूर जीतेगा। राजा ने कहा, नहीं, कोलाहल पंडित है, राज पंडित है, बहुत कितने विद्वान लोग हरा दिए, बालक क्या जाने, कुछ नहीं जानता है, हार जाएगा तुरंत। कहा कि नहीं। तो इस प्रकार से राजा रानी में यह हुआ। तो रानी ने कहा, यदि आपका पंडित हार जाएगा तो क्या दोगे? तो राजा ने कहा कि मैं पूरा राज्य इस बच्चे को दे दूंगा। तब राजा रानी का अपना बात हो गया, अब तर्क शुरू हुआ। तो बात हुआ कि पहले कौन तर्क करेगा, पहले कौन प्रश्न करेगा। तो कोलाहल पंडित तो बड़े महान राज पंडित थे, वो छोटे बच्चे से क्यों प्रश्न पूछेंगे? बच्चों काम है बड़ों से प्रश्न करना। क्या बोलो, क्या प्रश्न है तुम्हारा, बोलो, क्या तुम तर्क करना चाहते? करे तर्क आप करते हैं ना, करे तुम तो हमारे पास चैलेंज भेजा है ना, तर्क तुम्हें करना है। तो यमुनाचार्य ने कहा कि मैं तीन प्रश्न करूंगा, और यदि तीन प्रश्नों का उत्तर आप दे देंगे तो मैं हार मान जाऊंगा और मैं टैक्स पे करूंगा। तो कहा, बोलो क्या प्रश्न है। राजा ने पंडित का पक्ष लिया और रानी ने यमुनाचार्य का पक्ष लिया। यमुनाचार्य ने तीन प्रश्न किया, डायरेक्टली राजा से कहा कि आपकी मां बांझ नहीं है, आपकी मां बांझ नहीं है, ये प्रश्न है। अब राजा से पूछा, अब राजा कैसे बोल दें कि मेरी मां बांझ है, मैं मां का बेटा हूं तो बांझ कैसे मेरी मां हो गई। तो पहला प्रश्न था कि आपकी मां बांझ नहीं है, नहीं सॉरी ओ पंडित से। दूसरा कहा कि राजा धर्मात्मा है, और तीसरा महारानी पतिव्रता है, ये प्रश्न है। लेकिन इसका ये पहले ऐसे ही प्रश्न किया जाता था, उनको काटना था, दूसरे पंडित को ये काटना था। और इसने कहा कि आपकी मां बांझ नहीं है तो उसको काटना है कि नहीं मेरी मां बांझ है, ये कहना पड़ेगा, वो तर्क था। हाँ, इसने कहा कि राजा धर्मात्मा है तो पंडित का नहीं, राजा धर्मात्मा नहीं दुरात्मा है, ये काटना था। और तीसरा था कि महारानी पतिव्रता है, उसको कहना महारानी पतिव्रता नहीं है, हाँ? तो ये तर्क था। तो अब तो पंडित को बहुत गुस्सा आया, अब वो काट नहीं पा रहा था, हाँ? तो गुस्सा में आकर जमुनाचार्य को चैलेंज किया कि ये सब तुम बात कैसे कर सकता है, राजा के सामने भी बात करता है, कैसे कह सकता है कि राजा धर्मात्मा नहीं है, कैसे कह सकता है कि महारानी पतिव्रता नहीं है, यह अपराध है, यह पाप है, मैं चाहता हूं कि तुम उसका उत्तर दो, उत्तर नहीं जाए तो मैं फांसी पर चढ़ाई जाएगी। तो जमुनाचार्य कहे कि पहले आप हार मान रहे हैं ना, मैं तर्क करूंगा लेकिन पहले आप हार मान लीजिए। तब ओ पंडित जी सिर झुका दिए, मतलब कि ठीक है उत्तर दो, तो उत्तर देने लगे। पहला प्रश्न क्या था कि तुम्हारी मां है, पहला बात था कि आपकी मां बांझ है, पंडित से पूछा था। तो उन्होंने कहा मनुस्मृति के अनुसार जिसके एक संतान हो वह स्त्री बांझ कहलाती है, एक पुत्रों ही अपुत्रेण लोकोवादात, मनुस्मृति 961। जिस स्त्री को केवल एक संतान है वह बांझ है, यानी आप अपने बाप मां के अकेले हो इसलिए आपकी मां बांझ है। पहला तर्क उत्तर मिल गया। दूसरा प्रश्न था कि राजा धार्मिक है, धर्मात्मा है, और कहना था कि राजा धर्मात्मा नहीं है। तो कहते हैं दूसरा, चूंकि राजा प्रजा का पालक है अतः प्रजा के धर्म और अधर्म का 1/6 जो भाग है वो राजा का वो प्राप्त होता है। मनुस्मृति कहती है सर्वतो षट धर्म षड भागो राजो भवति रक्षता अधर्मापि षड भागो भवतस्य हि अरक्षता, मनुस्मृति 8:304। और कलयुग है, कलयुग में सब लोग अधार्मिक हैं, तो राजा जो है वो सबका पालक है, तो 1/6 अधर्म का भाग राजा लिया है, तो इसलिए राजा कैसा है अधार्मिक है। वो भी तर्क पार कर लिए। तीसरा था कि आपकी रानी जो है, राजा की जो महारानी जो है वो पतिव्रता है, पतिव्रता है, और तर्क देना था कि वो पतिव्रता नहीं है। तो तर्क क्या दे रहे हैं, कहते हैं मनुस्मृति के अनुसार राजा भगवान और समस्त देवताओं का प्रतिनिधि है, यानी सर्व देवता उसके शरीर में विद्यमान है, अतः रानी एक नहीं अनेक से ब्याह की है, अतः वह पतिव्रता नहीं है। फ्लैट राज पंडित फ्लैट हो गए, और रानी ताली बजाने लगी हैं, कई अलबंदा हैं, अलबंदारू 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 मतलब विजयी विजयी, रानी ने घोषित कर दिया। अब राजा को राज देना पड़ा, तो जमुनाचार्य इस प्रकार से राजा हुए। जमुनाचार्य की पत्नी का नाम था नाम्बी। नाम्बी की दो पुत्रियां थी, भूदेवी और श्रीदेवी। भूदेवी का विवाह हुआ था केशवाचार्य से, सॉरी भूदेवी के पुत्र थे केशवाचार्य, जिनके पुत्र थे रामानुजाचार्य। अब थोड़ा शिक्षा के विषय में बताऊंगा। रामानुजाचार्य भी अपने गांव से चले गए थे कांचीपुरम। समय है ना सबके पास, आज संडे है, प्रसाद भी होगा, कोई बात नहीं। लेकिन जब रामानुजाचार्य अपने गांव रहते थे तो एक शूद्र जाति का व्यक्ति था जो बहुत सुंदर विद्वान था और वो भक्त भी था। तो रामानुजाचार्य उसको एक दिन अपने घर बुलाए। उसका नाम था कांचीपूर्ण, कांचीपूर्ण, और उसका सेवा किए और उससे वे दीक्षा लिए और शिक्षा ग्रहण करना शुरू किए। तो इस प्रकार से जब कांची में निवास करते थे, वो कांचीपूर्ण के विद्यालय में वो पढ़ते थे। तो जब थोड़ा बड़े हो गए, करीब 8 साल के जो थे, तो एक नए स्कूल में नाम लिखाए, जिसके प्रिंसिपल थे जादव प्रकाश, यादव प्रकाश। तो वहां पर वे पढ़ने लगे यादव प्रकाश के स्कूल में। यादव प्रकाश मायावादी थे, तो मायावादी कृष्ण अपराधी, जो भी वेदांत सूत्र का भाष्य था उसका ठीक उल्टा उत्तर करते थे, जैसे आजकल पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे को गाली देती रहती है, वैसे ही मायावादी लोग कृष्ण को या विष्णु का हमेशा निंदा करते रहते हैं। तो एक छंद था उपनिषद से जिसका व्याख्या कर रहे थे जादव प्रकाश, वह था छंद कप्यासन कप्यासम पुंड्रिकम एवं अक्षीण। पुंड्रिकाक्ष का व्याख्या वास्तव में कर रहे थे, तो कहते हैं कप्यासनम पुंड्रिकम एवं अक्षिणी। तो वे कहते हैं कप्य मतलब बंदर और आसनम मतलब पीछे का भाग, बंदर के पीछे का भाग, भगवान के चरण आंख का वर्णन करते हैं। कैसा है भगवान का आंख, कैसा है कि बंदर के पीछे के भाग के समान है, लाल है। तो कहते हैं कप्य मतलब बंदर और आसन मतलब पीछे का भाग, तो विष्णु का कमल नयन बंदर के पीछे के समान है। इतना सुन करके रामानुजाचार्य के आंखों में अश्रु धारा बहने लगा और बहुत गर्म आंसू बह रहे थे, गर्म आंसू जल जो कि जला सके। रामानुजाचार्य से रहा नहीं गया, अब तक से रिस्पेक्ट करते थे, लेकिन आज पहला दिन था जो विष्णु का अपराधी यह था जादव प्रकाश। तो वे कहे कि नहीं, ये आप गलत कह रहे हो। तो कहा ठीक है, तो मैं गलत कह रहा, बताओ सही व्याख्या क्या है। तो सही व्याख्या उसका रामानुज कहते हैं कप्यासम मीन्स जो जल पर बैठा रहता, कप्य आसन जल पर, जल जिसका आसन है और जल पीकर खिला रहता है, यानी कमल, कमल जल पर बैठता है और जल पीकर के खिला रहता है। क मतलब जल और पी मतलब पीना और आसन मतलब आसन, पानी पी करके पानी के आसन पर जो बैठता है खिलते हुए वह है कमल। यानी भगवान विष्णु का आंख जो है वो कमल के सदृश है, जो जल में ही खिलता है, मतलब लाल, इसलिए कमल नयन कहा गया है कृष्ण को। फिर उसके बाद एक बार और बात हुआ था, सर्व खल इदम ब्रह्म नह नासी कंचनम। जादव प्रकाश कहते थे कि सब ब्रह्म है, इसमें कोई भेद नहीं है। और चाहे दूसरा एक है जो कि बड़ा फेमस है, कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि मायावादी लोग भक्ति नहीं करेंगे, आकर हॉस्पिटल बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे, सोशल एक्टिविटीज करेंगे और कहेंगे ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। और ये ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या तो हॉस्पिटल क्यों बना रहे हो? जब मिथ्या है हॉस्पिटल क्यों बना रहे हो? रामानुजाचार्य इसको बताए थे कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या नहीं, परिवर्तनशील, अशाश्वतम। ब्रह्म सत्यम जगत अशाश्वतम, इसीलिए उनको विशिष्टाद्वैत कहा जाता है। या ब्रह्म सत्य है तो जगत मिथ्या कैसे हो सकता है? ब्रह्म के द्वारा बनाया हुआ वस्तु मिथ्या नहीं हो सकता है, क्योंकि भगवान सत्य है इसलिए जगत भी सत्य है, केवल परिवर्तनशील है। उदाहरण के लिए हम लोग स्वप्न देखते हैं, स्वप्न में रसगुल्ला खाते हैं। जब रसगुल्ला सपना में खा रहे थे तो यह कहना रसगुल्ला मिथ्या है? मिथ्या नहीं है, उस समय खा रहे थे, टेस्ट आ रहा था, हमने साइज देखा, सब कुछ देखा, मिथ्या नहीं था, परिवर्तनशील था। सपना में खाए, बाद में खत्म हो गए। तो ऐसे बहुत सिद्धांतों का प्रतिपादन किया रामानुजाचार्य। तो आज उनका तिरुभाव तिथि है, ऐसे वर्णन किया गया है कि रामानुजाचार्य अपने जीवन काल में उन्होंने बहुत प्रचार किया था, बहुत प्रचार किया था। उनके 700 सन्यासी थे, 12,000 ब्रह्मचारी थे, 300 ब्रह्मचारिणी थी और बहुत से 74 सेंटर स्थापित किए थे इंडिया में अपने जीवन काल में रामानुजाचार्य। एनीवे, तो आज के दिन उनका इस संसार को छोड़े थे, उनका तिरुभाव हुआ था। श्रीपाद रामानुजाचार्य की जय, शील प्रभुपाद की जय। प्रश्न के लिए समय नहीं, सबको भूख लग गया ना, कोई प्रश्न है? चलो बढ़िया बढ़िया, प्रसाद है, चिंता मत करो, ये प्रश्न इनका है। हाँ बोलो।
प्रति अगर अपराध होता है तो हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि भगवान हमारी मदद कर रहे हैं या भगवान कैसे
ऐसा हो? देखिए, भगवान सूर्य के दो पुत्र हैं, मैं पहले कथा में बताया था, एक हैं शनि और एक हैं जमराज। जम मतलब दो, शनि और जमराज। जीवित व्यक्ति को दंड देते हैं शनि और मरने के बाद जमराज। तो विभिन्न प्रकार से दंड मिलता है, यही मिल जाता है।
मालूम कैसे पड़ेगा हम लोगों को इसको दंड मिल रहा है अपराध का?
वो दूसरे को मालूम नहीं पड़ेगा, जो गलती किया है उसको मालूम पड़ेगा। आप चाहते को उसको पड़े, मैं जाने तो मुझे अच्छा लगे है? भगवान ही नहीं करते हैं, जो गलती करता है उसको दंड मिलता है।
वही बात है, बाहर लोग बोलते हैं कलयुग में जमराज नहीं है।
क्या कलयुग में?
ये कलयुग में ये अब जो अजामबीड़ चरित्र चालू है, ये बोले कि द्वापर का युग बात है, द्वापर युग में अजामबीड़ को भगवान ने उधार कर लिया, अभी कलयुग में तो ज्यादा ज्यादा।
कौन बोलता है द्वापर युग में? कनौज तो यहीं पर है, कानपुर के बगल में।
बोले कि आपका गीता भागवत ये द्वापर युग का बात है।
हाँ,
ये लिखा है, ये कलयुग का नहीं है। कलयुग में कैसा है तुम्हारा?
कुछ चीज ऐसे होते हैं जो हमेशा रहते हैं, भगवान हमेशा से रहने वाले हैं। ये गीता भागवत अपौरुषेय है, किसी पुरुष के द्वारा नहीं लिखा हुआ है, तो ये भी हमेशा से रहने वाला है। क्या कह सकते हो कि ABCD क ख ग घ ङ ये सज्जु का बात है, कलयुग में नहीं चलेगा? बोलो कैसा? अक्षर जो होता है उसका नाम है अक्षर, जो क्षर न हो, कभी नष्ट न हो, वो कहलाता है अक्षर। भगवान है अक्षर ब्रह्मा। गीता के 3वें अध्याय में अक्षर योग को पढ़ो, प्रकृति पुरुष को पढ़ो, भगवान अक्षर हैं, अक्षर मतलब जो अनस न हो, वैसे ही उनका वाणी भगवत गीता जो है वो अक्षर योग है, वो कभी नष्ट नहीं होगा, समझ गए। क ख ग घ अंग पढ़ा है, उड़ीसा में क्या बोलते हैं, क दूंगा ना, बोलो किस बात, बोलो कैसे बोल, एबीसीडी में क्या बोलते हैं, क ख कैसे बोलते हैं,
और क्या बोलते हैं ना, और दूसरा
ना, पहले ये बताओ, जब तू पहले दिन स्कूल में गया तो टीचर क्या पढ़ाया तुमको,
एबीसीडी,
एबीसीडी थोड़े, उड़ीसा में कहां अंग्रेजी चलता है, क ख ग घ अंग यही ना, उड़िया में भी होता है, नहीं नहीं वही होता है। तो वो कहो कि अरे ये तो बहुत पहले का बात, अभी क्यों सिखा रहे हो, ये ठीक वैसे ही हुआ। भक्ति सिद्धांत जी एक कथा कहते थे कि एक बुढ़िया थी बेचारी, पढ़ी लिखी नहीं थी बेचारी, सेवा काम करती थी, उसका इच्छा हुआ कि मैं अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर खूब बड़ा बनाऊंगी, तो उसने एक ट्यूशन टीचर रखा, वो ट्यूशन टीचर आकर के उसको ज्योमेट्री, ज्योमेट्री का क्या, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति पढ़ाया था, पढ़ो ए बी सी डी एक त्रिभुज है, ए बी सी एक त्रिभुज है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी यही पढ़ा रहा था, मत त्रिकोणमिति पढ़ा रहा था, एबीसी एबीसी बार बता, तो बुढ़िया बड़ा सुन रही थी कि बच्चा पढ़ रहा है एबीसी एबीसी, तो पहला दिन एबीसी, दूसरा दिन एबीसी, तीसरा दिन एबीसी, कई एक दिन बीत गया, बुढ़िया एक दिन झाड़ू लेकर के आई है, दे मारी पंडित गए बदमाश कहीं का, ये पहला दिन भी एबीसी पढ़ा रहा था, आज भी एबीसी पढ़ा रहा है, तुम कुछ जानता ही नहीं भक्त, तुमको नहीं पढ़ा, तुम तो वैसे ही बात कर रहे हो, है तुम तो वही बात कर रहे हो, उसको मालूम नहीं था कि त्रिकोणमिति क्या होता है, एबीसी एबीसी वही, तो ये जिसको मालूम नहीं वो ऐसा बोलते हैं, कह रहे थे द्वापर युग का वाता अभी क्यों, उनको मालूम नहीं है कि एबीसीडी से कितना चीज बन सकता है, तो उन्हें मालूम नहीं है कि एक गीता भागवत जो है अपौरुषेय है, अक्षर है। ऑलराइट, एनी अदर क्वेश्चन, हाँ
हरे कृष्ण बाबू जी, जैसे रामायण में सुग्रीव जी को पिटाई हुआ था, इसका कारण था कि लक्ष्मण जी के चरणों में अपराध किया था, पर अभी आपने जो बताया विभीषण जी का ऐसा हस्त्र हुआ, उसका कारण क्या था,
मत समझा क्या विभीषण क्या नहीं?
अभी विभीषण जी को गांव में जो हुआ था,
शरण में आ गए थे, हाँ
तो उसका भी कुछ कारण होगा, अपराध होगा,
कुछ किए होंगे, एक तो दो तरीका देखने के लिए, एक तो ये है, दूसरा है ये देखने का कि पहले नंबर तो भक्तों पर जब भी कुछ वार होता है तो भगवान सील होते हैं, तो भक्तों पर उसका असर नहीं पड़ता है, किसे पड़ता है, भगवान पड़ता है। दूसरा बात, भगवान यही बतलाना चाहते थे कि मैं अपने शरणागतों का रक्षा करता हूं, शरणागत का रक्षा करता हूं, ये बतलाने के लिए भगवान वो लीला कराए।
प्रभु प्रभु, ये विशिष्टाद्वैत और अचिंत भेदाभेद को कैसे समझ सकते हैं?
अचिंत भेदाभेद तत्व जो है वो सब चीज का सार है, उसमें सब आ जाता है, शुद्धाद्वैत, द्वैताद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैत, सब आ जाता है, सब कुछ का सार है, सब चीज लेना है जीव से और ईश्वर से। अचिंत भेदाभेद तत्व का मतलब कि भगवान और जीव दोनों एक हैं भी और नहीं भी हैं। अचिंत मतलब चिंता से परे, भेद अभेद, भेद भी है नहीं भी है, मात्रा में भेद है लेकिन गुण में भेद नहीं है। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं आग और ए कैंडल, कैंडल और बड़ा आग का ए, दोनों हीट और लाइट बराबर है लेकिन मात्रा के कमी होने से एक पंखा चलाने से बुझ जाएगा, दूसरा पंखा चलाने से बड़ा हो जाएगा। इसलिए महाप्रभु सब कुछ को लेकर के और एक कहे कि अचिंत भेद अभेद तत्व, यानी महाप्रभु का जो सिद्धांत है वो सबको साथ में मिला करके, चाहे किसी संप्रदाय का हो सब इस्कान में आ सकते हो, आकर के हरे कृष्ण जप करो। ऑल राइट विल स्टॉप हियर. ग्रंथराज भागवतम की जाय. श्रील प्रभुपाद की जाय. श्रीपाद रामानुजाचार्य की जाय.